वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 38। पिछली बार जब मैं आया था पिछला श्लोक था, क्लास नहीं हुआ क्या?
एक क्लास हुआ, एक बार ये स्पेशल डेज थे,
स्पेशल डेज और एक क्लास हुआ उसके ऊपर क्योंकि तब पर हुआ था, फिर बाद में अपीयरेंस डे डिसअपीयरेंस डे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास के स्वामी और कल कल महाकाली हुआ शाम को होने वाला था
तो
शाम को
तो इस श्लोक के ऊपर हुआ नहीं ना। ये भी लंबा तात्पर्य, इस अध्याय में बहुत लंबे लंबे तात्पर्य है सब। हाँ ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनः
पुरातनः
नित्यं
हरिः
यत्
चरणं अभिवन्दनात् अवाप
लक्ष्मीं
अनपायिनीं यशः
जगत् पवित्रं
च
महत्
तमा
अग्रणी। अनुवाद और तात्पर्य।
श्लोक दोहराने
नहीं, केवल अनुवाद और तात्पर्य।
अनुवाद
अच्छा, मैं श्लोक बोलूंगा पहले, फिर मैं ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो
नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दना अवापलक्ष्मीं अनपायिनीं यशो जगत् पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मीं अनपायिनी यशो जगत् पवित्रं च महत्
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो
नित्यं हरिश्चरणाभिवन्दना अवापलक्ष्मीं अनपायिनीशो
जगत् पवित्रं च महत्तमाग्रणी
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो
नित्यं हरिर्यत् नित्यं हरिभ्यः चरणाभिवन्दनानि
अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो
जगत् पवित्रं च महत्तमाग्रणी
शब्दार्थ ब्रह्मण्यदेवः
ब्रह्मण्यदेवः
ब्राह्मण संस्कृति का स्वामी पुरुषः
पुरुषः
परम पुरुष पुरातनः
पुरातनः
सबसे प्राचीन
सबसे प्राचीन
नित्यं
नित्यं
शाश्वत
हरिः
हरिः भगवान यत् जिसका चरण
चरण कमल
अभिवंदना पूजा के द्वारा अवाप प्राप्त किया लक्ष्मीम ऐश्वर्य
लक्ष्मीम देव है ना
ऐश्वर्य अनपायिनी निरंतर यशः ख्याति जगत विश्व का पवित्रम पवित्र करने वाली च भी महत् महान तमा सर्वाधिक परम अग्रणी सर्वोपरि प्रथम अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तात्पर्य यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति का द्योतक है और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतोगुण पद पर ब्राह्मण के रूप में नहीं होता तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमो गुणों की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णुपुराण 1.19.65। भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गो वंश के आदि रक्षक है। इनको जाने तथा इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होता है। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता है वरन शाश्वत नित्यम अनादिकाल पुरातन से वह ऐसा करता आ रहा है। यत् चरणाभिवंदनात् पृथु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है। ये उनके आदर्श कार्य है। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर उनका सम्मान किया था। जब विप्र सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए और उनकी शैया में बैठाया और अपनी शैया में बैठाया। भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। भगवान के ये आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए है। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौओं की रक्षा की जाए किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाए और ब्राह्मणों तथा भक्तों का किस प्रकार आदर किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में तीसरा अध्याय 21वें श्लोक में कहा गया है, कहा है यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवे तरोजनः। महापुरुष जिस जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण लोग स्वतः ही करते हैं। भला भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कर्मों को करने की आवश्यकता थी, अपितु संसार को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर भगवान को महत्तम अग्रणी कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष जो ब्रह्मा जी तथा शिव है, किंतु वे इनसे भी ऊपर है। नारायण परो व्यक्तात्, भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं से ऊपर दिव्य स्थिति में है। उनका ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सारे संसार को पवित्र करने वाली है। हम जितनी ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं, यह संसार उतना ही अधिक पवित्र होता जाता है। इस संसार में भौतिक व्यक्ति को ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है, जो आज विख्यात है वही कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के छहों ऐश्वर्य न केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में भी शाश्वत है। भगवान कृष्ण का यह यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवद गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अद्वितीयानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। पिछले श्लोक में ये बताया गया था, ऋतु महाराज क्या रहे हैं, कि जो राज कुल के सदस्य होते हैं, राजा हो, रानी हो, राजकुमार, राजकुमारी आदि, उन्हें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो ब्राह्मणों और वैष्णवों से श्रेष्ठ हैं। ऐसे होने की संभावना है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, ऐश्वर्य होता है, बल होता है, तो उसके मन में घमंड आता है, स्वाभाविक है। और फिर वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और सभी को चाहिए कि वो मुझे प्रणाम करे, मुझे सम्मान दे, और मैं किसी को सम्मान नहीं दूंगा या सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। तो वैदिक सभ्यता वास्तव में ऐसे नहीं है। वैदिक सभ्यता ये है कि हर एक व्यक्ति अन्यों को सम्मान देता है। और वैष्णव धर्म तो इससे भी आगे बढ़ के है। वैष्णव एक चींटी को भी सम्मान देता है, तो फिर अन्य मनुष्यों की बात क्या, और वैष्णवों की बात क्या, और महान भक्तों की बात क्या। तो इसलिए वैदिक सभ्यता में ये सम्मान करने की एक जो परंपरा है, ये पालन करना चाहिए। अभी जब सम्मान करने की बात आती है, तो आजकल के ज़माने में तो लोग इसको नहीं समझते हैं। तो वैदिक सभ्यता में कैसे सम्मान का महत्व है, इसका एक उदाहरण हम भाषा से समझ सकते हैं। किस तरह से भाषा होती है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम जब किसी का संबोधन करते हैं, तो हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं?
आप, तुम, तू,
तू, तुम, आप। तो भेद करना होता है कि नहीं, कि किसी को भी तू कह दिया, किसी को भी आप कह दिया, किसी को भी तुम कह दिया, ऐसे होता है। राष्ट्रपति आएंगे, तू कैसा है, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं ना। तो क्यों नहीं बोलते, कैसे बात करते, आप कैसे हैं? तो इसका मतलब है कि भाषा में ही एक संस्कृति है, भाषा में ही सम्मान है। जिनको सम्मान देना चाहिए उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नहीं कि जिसको सम्मान अधिक नहीं देना पड़ता उनका हम तिरस्कार कर सकते हैं, उनके प्रति अन्याय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सम्मान सबको मिलना चाहिए, परंतु सम्मान के स्तर होते हैं, और जो अधिक सम्माननीय होते हैं उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी ऐसा ही है, भवान कहते हैं आप, और त्वम कहते हैं तुम। तो परंतु अंग्रेजी में कैसे है, क्या शब्द है अंग्रेजी में? यू। चाहे आप राजा से बात कर रहे हैं, आप किसी से भी बात करें, यू बोल दे, बस यू बोल के मुक्त हो गए। इसका मतलब है कि पाश्चात्य संस्कृति में सम्मान का इतना महत्व नहीं है। है, इससे पहले राजा वगैरह हुआ करते थे तो सब झुकना करना वो सब होता था, परंतु पुराने जमाने में भाषा में ऐसे होता था। आजकल भी हम देखते हैं कई बार जो एकदम पुराने संस्कृति के होते हैं, आज जब सन्यासी को बात करते हैं ना, तो वो अभी हिंदी में भी क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष में बात नहीं करते। मध्यम पुरुष मंगे आप या तुम नहीं कहते हैं। वो प्रथम पुरुष में बात करते हैं। जैसे यदि किसी महाराज से बात कर रहे हैं, वो कहेंगे महाराज की तबीयत कैसी है, तो आपकी तबीयत के उनसे बात कर रहे हैं। यदि मैं समस्त वैष्णव प्रभु की तबीयत की बात पूछ रहा हूँ अंजनानंदन प्रभु से, तो पूछूंगा समस्त वैष्णव प्रभु की तबीयत कैसी है, तो जब मैं जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ उसका नाम लेके करता हूँ, उसका मतलब है मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ ना। लेकिन समस्त वैष्णव प्रभु से बात करते हुए मैं कहूँ समस्त वैष्णव प्रभु कैसे है, तो कुछ विचित्र लगता है ना। परंतु जब ऐसे सम्माननीय व्यक्ति होते तो लोग क्या पूछते हैं, महाराज जी की तबीयत कैसी है, तो आप भी नहीं कहते, आपके ऊपर आप भी नहीं बोलना चाहते, किसी को संबोधन भी नहीं करना चाहते, महाराज की तबीयत कैसी है। तो इस तरह से ये एक भाषा है, भाषा एक संस्कृति, और मुझे याद है एक बार पहली बार जब मैं उत्तर भारत में गया था, मैं ब्रह्मचारी था, तो राजस्थान में किसी के घर में गए थे, थोड़ा धनी व्यक्ति था, तो हम गए अंदर तो अपने घर में बुलाया था प्रसाद के लिए, उधर थोड़ा कार्यक्रम वगैरह किया प्रवचन वगैरह, फिर अपना घर दिखा रहा था मुझे, घर उसकी गाड़ी वगैरह, ये है आपका घर, वैसे मेरा घर थोड़ी है, और ये है आपकी गाड़ी, और ये है आपका ये है आपका वो। उससे मैं आप बोलता, मैं बोलना नहीं, ये मेरा है, ये सब नहीं बोल सकते, नम्रता है। हम अन्यों को सम्मान तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक हम सम्मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात नम्रता जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी हम दूसरों को सम्मान कैसे करेंगे। तो दूसरों को सम्मान देते देते हमको लगे, अरे इसको मैं सम्मान क्यों दूं, उसको मुझे सम्मान देना चाहिए, मैं क्यों सम्मान दूं उनको। इसलिए ये बहुत कठिन चीज़ है संसार, क्योंकि लोगों के मन में सम्मान पाने की अपेक्षा है, इसलिए वो अन्यों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, इसलिए घमंड के कारण फिर वो अपमान ही कर देते हैं। सम्मान देने की बात तो दूर है, वो अपमान करते हैं लोगों का। आजकल अन्यों का अपमान करना बहुत ही एक साधारण बात हो गया है ना, आए दिन बिना सोचे समझे कोई भी कैसे भी बात करता है कि नहीं, किसका अपमान हो, सब कोई देखते नहीं है, कुछ भी बच्चे माता पिता का देखते नहीं है, और कोई बुजुर्ग हो आयु में अधिक हो उनसे कैसे बात करना है कुछ देखते नहीं है। ये आजकल की पद्धति ऐसी है, संस्कृति ऐसी है कि सब एक है, कोई जिसको ज़्यादा सम्मान नहीं है, कोई कम, ऐसे नहीं है। आधुनिक संस्कृति इस प्रकार से चल रही है, पाश्चात्य देशों से ये भावना आ रही है, परंतु सम्मान देना चाहिए। और भक्ति मार्ग में तो और भी अधिक है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, आप बोलो, शब्द भेद करके अर्थ जाओ,
तृण से भी अधिक हीन मन,
तृण से भी अधिक
हीन मन,
हाँ
तरूर सहिष्णु मतलब वृक्ष के समान सहनशील होकर अमानीन खुद की मान के अपेक्षा नहीं करना, मान देना दूसरों को, मान देना सदा।
मतलब अभी पूरा अर्थ अनुवाद,
स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तुरंत से व्याधि की मान कर वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर एवं दूसरों को सदा ही पूर्ण मान देने पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, सुबह का कार्यक्रम है ना,
डेली
बराबर हर शब्द
सुबह डेली वही
सुबह वही बोल, ऐसे भी कंटेस्ट करना अच्छा है वास्तव में, ताकि फिर अपने मन माने ढंग से हम कुछ अनुवाद नहीं करते हैं, जैसे है वैसे यथा यथा रूप है ना, बहुत अच्छा। तो अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदा हरि कीर्तन, सदा हरि कीर्तन करना है, ये युग धर्म है कलयुग का। परंतु युग धर्म का पालन करने के लिए योग्यता चाहिए ना। यद्यपि ऐसे कहा गया है कि हरि नाम लेने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो जब ये कहा गया इसका मतलब है कि हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है। धनी हो गरीब हो कोई भी ले सकता है। उच्च शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बहुत शिक्षित व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति भी हरि नाम को ले सकते हैं। या कोई बहुत सुसंस्कृत घर से है, कोई सुसंस्कृत घर से नहीं है, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। परंतु ये एक योग्यता अवश्य है जो इस श्लोक में कहा गया है, तृणादपि सुनिचेना, कि तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, और सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और अन्यों को सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये चार चीज़ें जब होंगी तभी व्यक्ति सदैव हरिनाम का कीर्तन कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये मान देना अमानिना, इनका संबंध बहुत गहरा है। संबंध क्या है? मान देना अमानिना, जब यदि हम अमानिन नहीं है, हम मानिना है, हमको मान चाहिए सम्मान चाहिए, तो मान देना नहीं हो सकते। और मान देना होते भी हैं तो इस अपेक्षा से कि हमको कुछ प्राप्त होगा। तो ये संस्कृति इतनी गंभीर है, प्रगाढ़ है, और इतना महत्वपूर्ण है ये, कि स्वयं भगवान इसका पालन करते हैं। और इसी बात को यहाँ पर पृथु महाराज बतला रहे हैं कि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं मनुष्य समाज में, तो वो भी मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए वो सिखलाते हैं, अपने कार्यों से, अपने उदाहरण से। तो यहाँ पर बताया गया है, ये कौन से शब्द यहाँ पे है, अवाप लक्ष्मीम अनपायनीम यशः। तो उनके जो यश का जो ऐश्वर्य है वो उन्होंने प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? उन्होंने भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, उनके चरण कमलों की उपासना करने से उनका यश प्राप्त हुआ है। भगवान तो भगवान है, यदि भगवान चाहते, जब भक्त उनके पास आते वो बोलते भाई मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरे चरण में रहना चाहिए, मैं तुम्हें क्यों नमस्कार करूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवद्गीता में ऐसे बोलते हैं भगवान, परंतु अर्जुन के साथ रहते कैसे हैं? मित्र की तरह। ये तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है, है कि नहीं? ऐसे छोटी मोटी बीमारी बहुत होती है, टीबी कोलेरा ये वो सब, कोरोना ये सब बीमारी होती है, लेकिन इससे बहुत बड़ी बीमारी क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? और खास करके भारत में तो बहुत चलता है, कोई हवलदार किसी को रोक देता है गाड़ी को, कि तुम जा रहे हो लाल बत्ती पार किया, तुम पता नहीं मैं कौन हूँ, कौन हो तुम? वो कोई मंत्री के रिश्तेदार का भाई का मित्र है, वैसे कुछ वैसा हूँ। फिर वो लगाएगा फोन, फिर वो बेचारे हवलदार को ताड़ना मिलेगी, प्रताड़ना की अरे तुम क्यों इसको किया, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। तो अपने सब हम हैं कुछ विशेष व्यक्ति हैं, तो हमको सम्मान क्यों, हमको नहीं जानता, हमको रोक रहा है आने से। तो वैष्णवों के लिए भी बहुत आवश्यक है, हम भूल जाते हैं, और भक्ति में आने के बाद भी हमको लगता है हमने इतने साल भक्ति किया, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ये तो अभी अभी आए भक्त, अरे ऐसे लगता है हमको मन में। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं वृंदावन में था तो उस समय आतंकवाद की समस्या थी, आज भी है, लेकिन उस समय हमारे मंदिर वृंदावन मंदिर का नाम किसी आतंकवादियों के कुछ बातचीत में निकला, तो जासूस की जो एजेंसी होते उन्होंने सरकार को बताया, सरकार हमको फ़ोन करते रहे, जिला अधिकारी हमको बार बार बोलते आपका नाम मंदिर का नाम है हिट लिस्ट में, तो आपको सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो रोज़ हैरान करते थे हमको। तो हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ा, सब जगह कैमरा लगाने हैं और दरवाजे में गेट के अंदर वो अंदर जाने के लिए पीप 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 करने वाला वो सब कोई हो, तो फिर अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं लाना और फिर थैली नहीं लाना, अंदर लाएंगे तो सबको देखना पड़ेगा क्या क्या है अंदर, सबके लिए समस्या थी। उस समय बम विस्फोट इधर उधर भी हो गए थे, तो उस समय जब ये करना पड़ा तो हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी थे द्वार के ऊपर उनको बहुत बड़ी समस्या हो गई, और समस्या किन से थी, बाहर वाले लोगों से नहीं, वो लोग अच्छी तरह से सहयोग करते थे, अब थैली दिखाओ थैली दिखाते थे, मोबाइल फ़ोन मत लाओ ठीक है बाहर छोड़ देते हैं, यहाँ से आओ तो आ जाते थे। समस्या किन से हुई किन से हुई अरे ऐसे कैसे हो सकते अरे एक भक्त आके बोले अरे मैं इतना सीनियर भक्त हूँ तुम मुझे कैसे पूछ रहे हो, मैं क्यों रखूँ अब ऐसा, इतने साल हो गए तो कितने समस्या हुई, फिर सैकड़ों लोग मेरे पास आके मुझे रोक रहे हैं, अरे भाई कोऑपरेट करो ना, सबके लिए समस्या है, अभी हमको ऊपर सरकार से दबाव आ रहा है, हमको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और यहाँ पे अमेरिकी लोग और यहूदी लोग बहुत हैं तो उनकी नज़र इनके ऊपर रहती है, ताकि कोई अमेरिकन व्यक्ति का खून वून हो जाए बम में तो उनके लिए बड़ा ये हो जाएगा, उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी आतंकवादियों की, अमेरिकन को मार दिया यहूदी को मार दिया, तो हम सब समझा रहे थे कि भाई समझ लो आप लोग कि ऐसा करना सबके लिए है, लेकिन बहुत मुश्किल है सबके लिए, हम मंदिर में इतने साल से आते हैं आप कैसे कर सकते हैं, मुझे आना चाहिए, अब बाहर के लोगों के लिए आप अलग से बनाओ, लेकिन हम आएंगे अंदर। तो इस तरह से ये होता है, बहुत मुश्किल है, भक्त होने का भी घमंड रहता है, मैं भक्त हूँ दूसरे लोग भक्त नहीं है, मैं विशेष हूँ, तो इतना आसान नहीं है ये नम्र होना, अन्यों को सम्मान देना। अभी हम कुछ जा रहे हैं दर्शन, खास करके मंदिर के अंदर लगा रहे हैं, तो बाहर के लोग भी हैं, लेकिन हम पहले नहीं उसको मैं भक्त हूँ ना अंदर जाना है, नहीं भाई तुम भक्त हो तो नम्र बनो, दूसरों को जाने दो ना पहले, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि हमने अभी तक भक्ति क्या है इसको समझा नहीं है ठीक से, केवल हाथ में माला लेके माला को फिराते रहना, माला को पॉलिश करना अपनी उंगलियों से, उससे केवल हम भक्त नहीं बनते हैं, भक्ति करना है तो ये हृदय के परिवर्तन की बात है, वैष्णव गुणों को लाना है जो कि अपने व्यवहार से होता है, अपने बोलने से होता है, तो सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है ना, तो हम जब अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसे हैं तो फिर मुश्किल है। और वो एक उदाहरण मैंने आपको कई बार दिया होगा, जो एक भक्त के विरोध में अनेक भक्तों ने शिकायत की थी कि बहुत झगड़ा करता है सबके साथ, बताया था ना, क्या बताया था किसी को याद है, उमेश अठवड़ा है, हाँ क्या बोल लो तुम्हें,
यात्रेला गेलेला तेव्हा त्या भक्ताकडून सर्वांना
त्रास होत होता का,
मग
तो भांडण करत होता सगळे,
भांडण त्रास होता, मग सर्व भक्त येऊन त्यांची त्या भक्तांची तुमच्या घेऊन तक्रार केलेली, मग तुम्ही जाऊन त्यांना
समजायचा प्रयत्न केला, मग आणि मी काय सांगितलं त्याला, काय सांगितलं,
जो भक्तों के साथ झगड़ा करते हैं या वाद विवाद करते हैं उनके साथ झगड़ा करके उनको हराओ सीधा।
अरे बिल्कुल उल्टा बोला मैंने।
वो बाद में
हर्षा
हमारे साथ में बोला कि आप उनके साथ कोऑपरेट करने का प्रयास कीजिए, आप वो भी एक वैष्णव है, आप तो वैष्णव व्यवहार करने का प्रयास कीजिए। तो वो बोले कि मेरे लिए वैष्णव या मेरे लिए जो वरिष्ठ है वो एक ही है बस, मुझे बाकी किसी को मानता नहीं।
हाँ लगभग सही है। मैंने क्या बोला उसको, मैंने सुना भाई देखो इतने भक्त लोग तुमसे नाराज़ हैं, सबके साथ वाद करते हो झगड़ा करते हो, अच्छा नहीं है, तुम भी भक्त हो वो भी भक्त है। तो फिर उसने अपनी बात बताई, मैंने बोला ये सब छोटी छोटी बात है, इसको छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बना के इतना क्यों करना है। हाँ वैष्णव भक्त समाज का की शांति भंग हो जाती है, तो वैष्णव होने के लिए हमको थोड़ा नम्र बनना चाहिए। तो जाओ उनके पास जाओ, थोड़ा दंडवत प्रणाम करो, एक दूसरे को हरी बोल कह के बात खत्म कर दो। छोटी छोटी चीज़ में झगड़ा करना सबके साथ क्या है इसमें। तो जब मैंने बोला कि जाके अन्यों को दंडवत करो, तो उसने क्या बोला,
गुरु को
मैं केवल मेरे गुरु को दंडवत करता हूँ और किसी को नहीं। बोला ये तुम्हारी समस्या है। मैंने बोला तो क्या गुरु को दंडवत करना गलत है? अरे नहीं बाबा, गुरु को दंडवत करो लेकिन अन्यों को भी करो। ऐसा नहीं है कि केवल गुरु को दंडवत करना बाकी के साथ झगड़ा करना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये वैष्णव है क्या? ये तुम्हारे गुरु ने सिखाया तुमको कि केवल अन्यों के साथ झगड़ा करो और गुरु को दंडवत प्रणाम करो? हाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये जब बात है ना, मैं क्यों दंडवत करूँ, मैं क्यों प्रणाम करूँ? अरे इतने साल के भक्त हो, क्या सीखे हो अभी तक? हरिनाम संकेत, वो सुबह 2:30 उठता है, कितना माला करता है मालूम है, और परिक्रमा रोज करता था, वृंदावन की परिक्रमा रोज करना है, ये सब तपस्या करके सुबह सुबह उठ के इतना माला जप करके हृदय कोमल नहीं हुआ। इसलिए अति तपस्या करने से भी समस्या है, हृदय कठोर हो जाता है, नम्रता नहीं रहती, कहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। अरे ये क्या है, ये तो 4 उठता है, मैं तो 2:30 उठता हूँ। अरे ये तो केवल 16 करता है, मैं तो 64 करता हूँ। तो देखो ये घमंड की बात है ना, बहुत सूक्ष्म है ये, तो भक्ति में भी आ सकती है। हमारे भक्ति का, हमारे तपस्या का भी घमंड आ सकता है, मैं अन्य भक्तों से श्रेष्ठ हूँ, देखो मैं जैसी सेवा करता हूँ मेरे जैसे कोई नहीं करता है, मैं जैसे क्लास देता हूँ ऐसा कोई नहीं देता है, मैं जैसे कीर्तन करता हूँ कोई नहीं करता है। तो ये बहुत समस्या है भक्त समाज में, इसलिए भक्त को चाहिए कि सूक्ष्म बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और उसको अपने जीवन में उतारें। और क्योंकि ये बात इतनी मुश्किल है करने के लिए, इसलिए स्वयं भगवान अपने जीवन में आचरण करके सिखलाते हैं हम सबको। भगवान कृष्ण भी जब द्वारका में थे तो प्रतिदिन प्रातः काल में उठते थे और फिर स्नान आदि करके फिर ब्राह्मणों को जाके दान देते थे, प्रत्येक ब्राह्मण को नमस्कार करते थे, चरण छूते थे और फिर अपने बुजुर्गों के पास जाते थे, उग्रसेन महाराज और अन्य सब हैं देवकी वसुदेव उनके पास जाते थे, प्रणाम छूते थे, चरण स्पर्श। उत्तर भारत में ये संस्कृति अभी भी है, कहते हैं प्रणाम भी करते हैं तो चरण स्पर्श कहते हैं, चरण स्पर्श, लेकिन करते भी हैं। तो केवल कहने बोलने की बात नहीं है, करना भी चाहिए। मैंने बताया होगा एक बार मायापुर में एक सन्यासी थे महाराज, तो एक ब्रह्मचारी जा रहे थे, दंडवत महाराज। तो उनको गुस्सा आया, क्या दंडवत बोलने की बात है कि करने की बात है? करो दंडवत बोलो। वो सन्यासी घमंडी नहीं थे, पर उनको वो सिखा रहे थे कि ये क्या, वो क्या बोलना, क्या दंडवत दंडवत करो ना दंडवत। जैसे हम तो वृंदावन प्रभु मनाये वृंदावन प्रभु भक्त है तेने तुकाराम महाराजा एक पुस्तक लिखेल है ते म्हणायचे ते आम्ही महाराष्ट्र मध्ये फिरतो इकडे तिकडे ते सगळे म्हणतात हरिमुखी म्हणा हरिमुखी म्हणा पण हरिमुखामध्ये घेत म्हणत नाही फक्त बोलतात की तुम्ही म्हणा म्हणा पण स्वतः म्हणत नाही म्हणजे जप नाही करते कीर्तन नाही करते फक्त हरिमुखी म्हणा इतनाही बोलते है ऐसे केवळ दंडवत ऐसे करके मोकळून जातात दंडवत बोलले की झालं नाही करायचं दंडवत रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव दिन था ना दो तीन दिन पहले वो प्रत्येक दिन भगवान के विग्रह को 1000 बार नमस्कार करते थे वैष्णवों को दिन में 2000 बार नमस्कार करते थे ये सुन के ही हमारा थोड़ा आंख दुखने लगता है क्या है करने की बात तो दूर है बात सुन के भी लगता अरे हे अस कस हो दुखत ते दुखत होत नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे करते थे उनकी साधना कैसे थी पत्थर की लकीर पत्थर के ऊपर रेखा होती है ना वैसे उसके उसकी समान थी पौषण गोस्वामी ऐसे ही करते थे परस्पर आपस में सम्मान करते थे एक दूसरे को तो भगवान श्री कृष्ण जब थे वैसे करते थे और जब वो और केवल कृष्ण नहीं सारे राजा वैदिक सभ्यता में राजा थे ऐसे कोई वेन वेन वगैरह हो तो वो अलग बात है भगवान कृष्ण के दरबार में जब नारद मुनि आए तो स्वयं उठे अपने राज सिंहासन पर नारद मुनि को बिठाया और उनकी आरती उतारी चरण दबाए सुदामा जब आए अपने शैया पे बिठाया उनके दूध से उनके चरण धोए आरती उतारी फिर उनके चरण चरणामृत से अपने सर पे छिड़काया सारे परिवार के सदस्यों के सर पे छिड़काया सुदामा कृष्ण के भक्त थे परंतु भगवान भक्त के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं तो भगवान क्या बतलाना चाहते हैं कि यदि मैं मेरे भक्तों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता हूँ तो आप लोग जो भक्त है आपको और कितना आवश्यक है कि अन्य भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करना जब भगवान स्वयं ऐसे करते हैं तो आप सब क्यों नहीं कर सकते भगवान ये बताना चाहते हैं हम सबको इसलिए भगवान सिखलाते हैं हमको तो उनकी ख्याति कैसे बढ़ती है क्योंकि जिनको सम्मान देना चाहिए उनको देते हैं और सम्मान के योग्य कौन है महान वैष्णव महान ब्राह्मण ये हमारे सम्मान के योग्य है वास्तव में सबका सम्मान होना चाहिए परंतु विशेष रूप से ऐसे महान लोगों का सम्मान होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है वैष्णव समाज अपने व्यवहार से जाना जाता है व्यवहार विचारधारा पर आधारित है विचारधारा संस्कृति और शिक्षण पर आधारित है इसलिए छोटी छोटी बातें में हम व्यवहार ठीक नहीं करते प्रसाद भी लेते समय कोई आए हैं तो जो अतिथि आए उनको पहले बिठाना है उनको प्रसाद परोसना है फिर बाद में हम लेंगे कोई आए हैं पहले उनसे बात करना है ठीक से और जो भक्त नहीं बने हैं वो जब भक्त समाज में आते हैं सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि आपस में भक्त लोग कैसे व्यवहार करते हैं यदि देखेंगे कि भक्त लोग अरे तुरे बहुत कर रहे हैं तो बोलेंगे अरे क्या क्या फायदा आप में से कईयों को अनुभव हुआ भी होगा या नहीं पता नहीं अनेक भक्तों को हुआ है जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है और घर में विरोध होता है और घर वाले उसको तंग करते हैं ऐसा मत करो ऐसा क्यों है उसको बार बार कुछ न कुछ टोकते रहते हैं और आखिर उसको गुस्सा आ ही जाता है क्योंकि उसको कुछ न कुछ कह के उसको परेशान करते रहते हैं ऐसे कैसे तुम्हारे गीता में ये है, ऐसे है, वैसे है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब वो भड़क जाता है, कुछ बोल देता है, तो उसको कहते यही सिखाया क्या मंदिर में, यही सीखते हो क्या? ऐसे सुना है आपने कभी? ऐसा होता है कभी कभी? वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भक्त को ऐसा कर करके उसको बेचारे को भड़काएंगे और उसके मुंह से कुछ निकल गया तो फिर हिचिकोलो का तुला मंदिर में है, हिचिकोला है कि नहीं? इसलिए भक्त को चाहिए कि बहुत सावधान रहे, परस्पर भी कैसे व्यवहार करते हैं, अरे तुरे। थोड़े दिन पहले एक भक्त हमको बता रहे थे कि कोई अतिथि आए थे, तो वो उनको लेकर जा रहे थे कहीं, तो और एक भक्त मिले, अरे इकड़े ये रहे, ये काय कर, तो ऐसे ऐसे अरे तुरे की बात उसने कर ली। बोलो मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ, उसके सामने तो मेरे साथ ठीक से बात करना चाहिए, हाँ ये क्या अरे तुरे करके बात कर रहे हो? तो उसने बोला भाई मेरे साथ लोग हैं। अरे क्या है, मेरे तो आओ। तो फिर वो लोग भी देख रहे हैं ना कि क्या इनका आपस में कैसा लीला चलता है, हाँ कितना खराब लगता है कि नहीं? खास करके जब कोई अतिथि आए हैं, उनके सामने कैसे अन्य भक्तों से बात करना, कैसे उनका संबोधन करना, कैसे पुकारना उनको, हाँ तो भले अतिथियों के साथ हम कैसे भी बात करें, वो अच्छी तरह से ही बात करेंगे, कभी कभी वो भी नहीं करते, करना चाहिए। और खास करके भक्तों के साथ, ऐसा नहीं कि अतिथियों के साथ अच्छा कर लिया तो भक्तों के साथ कैसे भी कर लिया, नहीं। जब नए लोग आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उनसे अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मुझे एक याद है, अमेरिका में एक भक्त थे, मैं गया था, तो 25 साल से भक्त है। तो बोला तुम ऐसे हो क्या, सोला माला सब करते हो, क्या बात है, तुमने आगे चल के दीक्षा नहीं लिया या क्यों, क्या तुम्हारा कुछ है? नहीं, जब जब दीक्षा ले जाते हैं ना, ले लेते हैं, उसके बाद सब हमको अरे तुरे शुरू हो जाता है, उसके पहले सब हमको सम्मान देते हैं, करते हैं। एक बार पुराने भक्त हो गए तो चलो चलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे नए भक्त हो, पुराने भक्त हो, अतिथि हो जो अभक्त है, कोई भी हो, सबके साथ प्रेम आदर का व्यवहार होना आवश्यक है, ये वैष्णवता है। केवल औपचारिकता नहीं है ये, औपचारिकता मुझे समझ लो, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता मराठी में क्या मानते हैं,
साधारण
परिस्थिति,
फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी
औपचारिकता,
औपचारिकता म्हणतात ना, समज लो ना, करायचं म्हणून करायचं काय, माझ्याकडे माळ आहे ना, हातात घेऊन फिरतो ना मी, आता पॉलिशिंग छान होते मणींचं, पॉलिश 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 करत असतो, ते तिलक असत, माळ असते, कंठी माळ असते, वैष्णव फक्त पोशाख, केवल पोशाख से नहीं जाने जाते वैष्णव, वैष्णव विचारधारा और व्यवहार से जाने जाते हैं। पोशाख तो कोई भी पहन सकता है ना, इसलिए हमारा हमारा जो व्यवहार है वो हमारी परीक्षा है। खास करके भक्त समाज में हम कैसे वातावरण निर्माण करते हैं, आपस में व्यवहार कैसे करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होंगे, मतभेद तो होंगे, निश्चित होंगे, जब दो मनुष्य हैं तो होने ही होने हैं ना मतभेद। एक घर के अंदर भी तीन चार लोग रहते मतभेद होते हैं, तो जहाँ 50 लोग हैं वहाँ तो होंगे, परंतु मतभेद का निवारण कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। समझदारी से करना चाहिए, परिपक्वता से करना चाहिए, वैष्णवता से करना चाहिए। जब भगवान स्वयं दिखला रहे हैं ना, कि कैसे करना है, चाहे वो नारद मुनि हो, सुदामा विप्र हो, और श्री रामचंद्र कैसे करते थे, सबका सम्मान करते थे। यहां तक कि जब उन्होंने रावण का वध कर दिया लंका में युद्ध में, और फिर उनके जो रानियां थी मंदोदरी आदि, वो सब आई वहां पर रो रही थी रणभूमि पर ही, और फिर अंतिम संस्कार करने का समय आया तो विभीषण उनके पास आया कि ये मेरे भाई तो हैं पर मुझे नहीं लगता कि मैं इनकी अंतिम क्रिया करना चाहता हूँ। कुंभकर्ण की हत्या भी हो गई थी, रावण की हत्या भी हो गई, तो और कोई भाई वगैरह थे नहीं, उनके पुत्रों की भी हत्या हो गई, मेघनाद आदि सब, तो अकेले विभीषण बचे थे। तो विभीषण ने कहा कि ये रावण मेरा भाई इतना दुष्ट निकला कि मैं इसकी अंतिम क्रिया नहीं करूँगा। तो श्री राम ने ऐसा बोला, नहीं ये ठीक नहीं है, तुमको करना चाहिए। देखो कैसा सम्मान दिया कि ऐसे व्यक्ति को तुम अंतिम क्रिया नहीं करना, ये ठीक नहीं है। तो यद्यपि रावण इतना द्वेषी था, रावण ने सीता देवी का अपहरण किया था, फिर भी जब अंतिम क्रिया करने का समय आया तो प्रभु राम ने कहा सम्मान से करो उनका, सम्मान से अंतिम क्रिया करो। फिर विभीषण ने जाके कर लिया। तो इस प्रकार से हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं वैदिक सभ्यता क्या है। जब कोई शत्रु भी हमारे घर में आता है तो उसको उसके साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वो भूल जाए कि हम दोनों शत्रु हैं। इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं। और ऐसे होता था, कुरुक्षेत्र के प्रतिदिन युद्ध समाप्त होता था सुबह से शाम, शाम को जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो कौरव और पांडव एक दूसरे के तंबू में जाके गपशप करते थे, प्रसाद लेते थे साथ में। फिर अगले दिन सुबह को सूर्योदय पे एक दूसरे के गर्दन काटने की बात, युद्ध में युद्ध बाकी हम लोग करेंगे, ऐसे वैदिक सभ्यता है। तो इसलिए हमको भगवान के उदाहरण से सीखना चाहिए। भगवान जानते हैं कि इतना कठिन है इसलिए स्वयं सिखाने आए हैं। वो बंगला कविता की पंक्ति आपको सिखाए ना, हमने बताया ना एक बार त्रेणादपि श्लोक के बारे में, नहीं? तो एक बंगला कवि है तो उसने एक पंक्ति लिखी थी, वैष्णव हवार मने चिलो सार त्रिनादपि श्लोक सुने उड़े जालो बार। हाँ राधा कुंज बिहारी प्रभु शब्द है ना, वैष्णव हवार मने चिलो सार त्रिनादपि श्लोक सुने उड़े जालो बार। बहुत समय से वैष्णव होने की इच्छा थी मुझे, वैष्णव वैष्णव बहुत सुना था मैंने, क्योंकि बंगाल में महाप्रभु वृंदावन ये सब था, तो मुझे वैष्णव बनना है बनना है बनना है, बहुत समय से इच्छा थी। फिर मैंने ये त्रिनादपि श्लोक सुना, फिर मैंने सोचा भूल जाओ, ये सब हमारे लिए नहीं है। तृण से भी अधिक नम्र बनो, वृक्ष से भी सहनशील बनो, अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करो, अन्यों को सम्मान दो, नहीं होना मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं वैष्णव नहीं बनूंगा। तो ये होना बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि इतने करोड़ों जन्मों का अहंकार जमा हुआ है ना हृदय में। छोटा बच्चा भी है देखो, वो उल्टा जवाब देता है कि नहीं, छोटा बच्चा भी उसके पूर्व जन्मों का है वो भी करेगा। तो अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, और वैष्णव समाज में इसका दमन करना चाहिए, फिर वास्तव में हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका? मतभेद मतभेद है कोई नहीं
हर भक्त को समय और परिस्थिति के हिसाब से वो एक जूनियर बनता है नहीं तो एक सीनियर बनता है. तो जब वो जूनियर की पोजीशन में रहता है तो उसको एटलीस्ट ये समझ में आता है कि वरिष्ठ को कैसा कैसा व्यवहार करना है ये करना है और उसके कभी कभी फेल होता है मतलब उसका विफल होता है कभी कभी सफल होता है. लेकिन जब एक सीनियर के पोजीशन में उस परिस्थिति में वो आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब नए भक्त आए रहते हैं तो उनके साथ ऐसा सर्द हो सकता है कि अगर मैं बहुत सीरियसली जो कि वैष्णव सिद्धांत है उसके हिसाब से व्यवहार किया तो ऐसा देखा जाता है कि मतलब वैष्णवता का एक वातावरण सृष्टि होगा. लेकिन कभी कभी जो सीनियर के पोजीशन से थोड़ा थोड़ा कभी मजाक करना या कैसे ये करना थोड़ा खींचातानी करना ऐसा होता है तो उसमें संबंध भी मधुर भी हो जाता है कभी कभी. तो अभी प्रायोरिटी किसको देना है इसलिए वो वैष्णवता के वातावरण
हम सम्मान देने की बात करते हैं तो सम्मान के अलग अलग स्तर भी होते हैं और प्रकार भी होते हैं. मूल सिद्धांत तो जो हमारे व्यवहार का आधार होना चाहिए वो है सम्मान. परंतु सबको एक तरह का सम्मान नहीं दे सकते हम. जैसे मैं बोला राष्ट्रपति अंदर आ गए तो उनको जो सम्मान देंगे वो अन्य व्यक्ति को सम्मान देने से अलग होगा. सम्मान के भी वर्ग होते हैं श्रेणियां होती हैं. जैसे बिल्कुल नया भक्त है रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या कहते हैं इसको श्लोक याद है तीन प्रकार के भक्तों से कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए.
कृष्णेति यस्य गीतं मनसाद्रियेत
गिरितं मतलब क्या है
जो कृष्ण नाम ले रहा है उनको मन में आदर.
तो मतलब जो नया भक्त है इसने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया है उसका आदर कैसे देना चाहिए. मन में प्रणाम करना चाहिए. मनस आद्रियता आदर करना चाहिए मन में. ऐसा नहीं कि सबके सामने जाके दंडवत करना वो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह नहीं कर सकते. तो एक बार किसी ने कृष्ण ने अरे कृष्ण ले लिया प्रणाम करो नहीं ये तो नहीं हो सकता है ना सब जगह करना. तो कम से कम मन में आदर करना चाहिए. फिर
दीक्षा अस्ति चेत् प्रणति विष्ट चरणम
अनुष्ठ थोड़ा स्पष्टता से बोलो. दीक्षा अस्ति चेत् प्रणति विष्ट
प्रणति विष्ट
कौन बोलेगा
भजन्तमीशम.
तो जो गंभीरता से भक्ति कर रहा है दीक्षित आदि है तो उसको कैसे सम्मान करना चाहिए. प्रणति भी ही मतलब प्रणाम करके और फिर
शुश्रूषया
भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य. तो अनन्य जो भजन में विज्ञ है जो बहुत भजन में आगे बढ़ चुके हैं और निंदा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए. शुश्रूष भी सेवा करनी चाहिए. केवल प्रणाम ही नहीं सेवा करनी चाहिए. इस प्रकार से वैष्णवों के अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनके प्रति अलग अलग प्रकार का सम्मान होना चाहिए. तो हमसे जो पहले भक्ति में आए हैं सेवा कर रहे हैं उनको थोड़ा सम्मान देना चाहिए. उनको जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको सम्मान देना चाहिए. तो ठीक है, एक आध बार कभी संबंध के अनुसार कुछ उपहास हो सकता है, उससे रस थोड़ा मधुर हो जाएगा, परंतु ये निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है, सामने वाला व्यक्ति कैसे है ना? ठीक है, हर बार एकदम गंभीर रहेंगे तो फिर वो ओम शांति वाले बन जाएंगे। हम लोग जब, मुझे याद है, हम लोग भक्त बने थे, हम लोगों ने एक नाटक किया था। नाटक क्या था, चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए हैं, वहाँ पे मायावादी सन्यासियों के को मिले हैं, प्रकाश आनंद सरस्वती आदि। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई थी और कोई दो भक्त थे, उन्होंने कोई कोई प्रकाश आनंद सरस्वती, ये सब त्रिपुंड और इसे, तो उनको, उनका क्या होता है, एकदम गंभीर है ना, ऐसे एकदम ऐसे बैठने को आए, ऐसे कुछ हंसने का नहीं, मुस्कुराना नहीं। तो हम लोग बाद में दोनों को बोले ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि उनका नाटक में ऐसे रोल था ना, कि ऐसे बैठते हैं, क्योंकि वो सोचते थे ये सन्यासी है श्री कृष्ण चैतन्य, हमारे जैसे सन्यासी है, भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लिया है, और हमारे जैसे बैठ के गंभीरता से वेदांत का पठन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, ये तो भावुक होकर अन्य भावुक लोगों के साथ सड़कों में संकीर्तन करता है, ये तो ठीक नहीं है, उसको हमारी तरह होना चाहिए। ऐसे तो ऐसे होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा मजा कर सकते हैं एक आध बार, परंतु हरेक को अपनी अपनी मर्यादा याद होनी चाहिए, है ना? बराबर।
हाँ जी, जो दो श्लोक है तिड़ालपि और कृष्णे दी अस्य गीतम, ये वर्णाश्रम के स्तर में आने की भागवत स्तर पे आने, मतलब जैसे कि अभी पहले के युगज में अगर एक राजा रहता है तो जनरली राजा तो रहता था वो डायनेस्टी से बनते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ऐसा हो सकता है कि राज्य में किसी और की पात्रता हो, बट वो लोग प्रेफर करते थे कि राजा हमारे कुल से हो, तो अगर कोई एक सामान्य प्रजाजन है उस उन्हीं के राज्य में कोई एक राजा की आयु से कम हो सकता है, आयु उनकी बहुत कम है, तो वो अगर आध्यात्मिक दृष्टा बहुत ज़्यादा ये है उच्चतम स्तर पर है, तो एक सामान्य नागरिक उसको ज़्यादा मतलब उनका जो डीलिंग्स है वो ज़्यादा स्तर के ऊपर होगा एज़ कम्पेयर टू राजा। तो राजा को अभी वर्णाश्रम के स्तर के हिसाब से तो आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु वो अगर ये आदान प्रदान देखेगा तो उसको थोड़ा ये लगेगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो इसलिए महाराज इसको कैसे समझेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वैष्णवों को सम्मान देना है, वैष्णवों को तो सबसे अधिक सम्मान देना है, परंतु समाज में किस किस को सम्मान देना है इसके भी कोई वर्ग होते हैं, आधार। एक है आयु के आधार पर, जो हमसे आयु में बढ़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए दादा दीदी ऐसे बात होती है ना, बड़े किसी को भाई बोलते हैं कुछ, है ना? तो ये एक है, उम्र में जो बड़े हैं उनका कैसे सम्मान करना, ये एक कारण है सम्मान का। दूसरा है वर्ण, तो सारे लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते थे क्योंकि ब्राह्मण कहे श्रेष्ठ वर्ण है, क्षत्रियों को भी चाहिए था कि वो सम्मान करें। तीसरा है पद, भले एक वर्ण के क्यों ना हो लेकिन किसी को कोई ऊंचा पद है तो उस पद का को सम्मान देते हैं, जैसे कोई राष्ट्रपति है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो पद का सम्मान करते हैं। फिर आश्रम, आश्रम में सन्यासी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वर आश्रम में, जैसे ब्राह्मण वर्ण में श्रेष्ठ है, आश्रम में सन्यासी सबको स्वाभाविक रूप से सम्मान योग्य है। तो क्षत्रियों के लिए बल, जो ज्यादा बलवान है क्षत्रियों में वो उसको सम्मान देगा। ब्राह्मणों में विद्या, वैश्यों में धन, ये लोग आपस में अपना अपना सम्मान देंगे एक उसको। और अंततः ये सारे जितने भी कारण क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण सम्मान के लिए कारण क्या है? आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक स्तर। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए, जिस स्थान पर परीक्षित महाराज सबके साथ बैठे थे, सारे ऋषि मुनियों के साथ में बैठे थे, तो वहां पर कौन कौन उपस्थित थे? बहुत सारे ऋषि मुनि थे, नारद मुनि भी थे, व्यासदेव भी थे जो सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं। तो सब लोग उठे सुखदेव गोस्वामी के आने के बाद, सिवाय व्यासदेव और नारद मुनि, क्योंकि एक शिष्टाचार के अनुसार पिता गुरु परम गुरु को उठना नहीं चाहिए। फिर भी व्यासदेव के उपस्थिति में, नारद मुनि के उपस्थिति में भी 16 वर्षीय एक युवक को बताया गया कि आप राजगद्दी पर बैठो, राजगद्दी नहीं व्यासपीठ पर बैठो और कथा करो, क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत आत्मसाक्षात्कारी युवक है। तो सबसे ऊंचा जो महत्वपूर्ण सम्मान का कारण है, आध्यात्मिक या भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। उस समय कोई आयु में ज्यादा हो, वर्ण या आश्रम में ज्यादा हो, इसका महत्व तो होता है, परंतु इससे कम। ठीक है, तो व्यक्ति को समझना चाहिए तुलनात्मक दृष्टि से कि कैसे कब किसका सम्मान करना चाहिए इत्यादि।
इनका स्तर है महाराज, पहले आयु, फिर वर्ण, फिर पद और फिर आश्रम, क्रम के हिसाब से है कि क्रम चेंज
नहीं, अलग अलग। जैसे एक बूढ़ा क्षत्रिय है, लेकिन एक बालक ब्राह्मण भी आता है तो उसको सम्मान करना, जैसे बलि महाराज और वामन देव। वामन देव पहले बटु ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी के रूप में आए, ये ब्राह्मण है इसलिए बलि महाराज जो इतने बड़े राजा थे वो भी उठे, ब्राह्मण है, वर्ण है। यद्यपि बलि महाराज उस बालक से आयु में बड़े थे, फिर भी वर्ण का महत्व रहा। क्या कोई सन्यासी है तो आयु में कम होंगे भी, सन्यासी आए इसलिए सम्मान करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में हमारे इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला हुआ और दो भक्तों की हत्या हुई, पता है ना आपको सबको? और एक भक्त गंभीर है, तो ये 3-4 दिन पहले हुआ, 15 तारीख को, ऐसे 16 तारीख को ऐसे हुआ, 14 तारीख को हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर, अन्य मंदिर भी जलाए गए, और बहुत जो दुर्गा पूजा के पंडाल थे वो भी सब खराब कर दिए गए वहाँ के कट्टरवाद लोगों ने। तो इसलिए विश्व भर में इस्कॉन की शाखाओं में भी विरोध हो रहा है, अभी सब जगह कर रहे हैं। और भक्तों से ये कि हम सब प्रार्थना करें हमारे बांग्लादेश के भक्तों के लिए कि भगवान उनकी सुरक्षा करें हर दृष्टि से, क्योंकि वहाँ उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, नाजुक है। और मैं गया हूँ एक बार बांग्लादेश, तो मुझे पता है कि किस तरह के परिस्थिति में वो लोग भक्ति करते हैं। तो आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए उनकी सुरक्षा के लिए हर दृष्टि से। और वो वीडियो भी आए थे कि कैसे मंदिर के अंदर आके आक्रमण किया, प्रभुपाद जी की मूर्ति को उन्होंने जला दिया, भगवान के विग्रह को केवल दूर से मार बैठा, लेकिन शायद वो नहीं जा पाए अंदर, वो ये था दरवाज़ा था इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन सारे मंदिर को उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया पूरा। और भक्त लोग भी, किसी भक्तों ने भी ऊपर से वो ये लिया था, क्या बोलते हैं, वीडियो शूटिंग किया था, तो उसमें दिखता है कई लोग की भीड़ भीड़ बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है, सैकड़ों लोग और सब तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। तो कलकत्ता में भी भक्तों ने बहुत बड़ा संकीर्तन किया था बांग्लादेश के दूतालय के सामने कि न्याय चाहिए और वहाँ पे अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए इत्यादि। तो हमारे मंदिरों में यहाँ थोड़ी प्रार्थना वगैरह हो रही है, आप सभी यहाँ पे थोड़ा कर लेना सुबह को वहाँ के भक्तों की रक्षा के लिए और अल्पसंख्यक जो भी हिंदू हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो दुर्गा देवी मंडप में भी उनके भी विग्रहों को तोड़ दिया, ये सब बहुत कुछ किया उन्होंने। क्योंकि हुआ क्या कि जब एक दुर्गा पंडाल में पुजारी गए तो उन्होंने देखा कि एक कुरान की प्रति हनुमान जी के गोद में रखी गई है या पैरों में है, वो तो उनमें से किसी से जानबूझ के किया ऐसे। तो पुजारी ने देखा तो तुरंत पुलिस को बुलाया कि मालूम है उसको कि यहाँ पे इसका ये क्या है। पुलिस को बुलाया कि लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने फ़ोटो ले लिया और उसको ये क्या बोलते व्हाट्सएप वगैरह में उसको डाल दिया और सब जगह फैल गया। और जैसे ये पकड़ फैल गया सब लोग आके आक्रमण करने लगे, जितने भी मंदिर थे पूजा पंडाल थे, कितने सारे गांव में भी हिंदुओं के जल घर जला दिए, उनके दुकान जला दिए, तहस नहस कर दिया उन्होंने। ये जानबूझ के किसी ने ऐसे किया, जानबूझ के वो मुसलमानी व्यक्ति था कोई, बाद में पकड़ा गया, उसने जाके ये कुरान हनुमान के ऊपर रखा ताकि फिर वो बोल सके कि देखो इन्होंने अपमान किया हमारे ग्रंथ का। तो ऐसे सब वातावरण है वहाँ पे, बहुत खतरनाक है उधर उनके लिए। तो प्रार्थना हमको करना चाहिए उनके लिए। और शनिवार के दिन हम लोग संकीर्तन निकाल रहे हैं बेलगाम में भी, और जिलाधिकारी के पास जाएंगे, वहाँ पे भी उनको एक पत्र देंगे। वैसे हमारे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेलगाम छोटा शहर है, वो कहाँ प्रधानमंत्री को जाएगा, वो वहाँ बोलेंगे, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारा कर्तव्य है और वहाँ के भक्तों को भी समझा कि हम हैं आपके साथ में इसके लिए, और सारे समाज में भी पता चले कि ऐसे हुआ करके। तो ये एक थोड़ी समस्या है आजकल, जो दो जब घृणा और द्वेष हमारे धर्म का एक प्रमुख एक बात बन जाता है, तो फिर अभी उनका नाश तो निश्चित है, क्योंकि वैष्णवों के प्रति इतना अपराध किया है बिना वजह, तो फिर अभी क्या और हो सकता है। और वो भी प्रभुपाद जी की मूर्ति का नाश किया, तो विनाश काल विपरीत बुद्धि होता है ना इससे।
महाराज इस साइड से जब हम नम्रता ये सभी जब बोलते हैं, ये जब हमारा धर्म का विरुद्ध ही हो जाता है,
तभी नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ कोई लोग आए हम यहाँ आश्रम का सब चोरी करके ले जाए, ये यहाँ पे आके सब तोड़ फोड़ करे और हम हरि बोल ऐसे करके बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना। उस समय जो आवश्यक है रक्षा के लिए वो तो करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तुम युद्ध करो, अर्जुन नम्र था। नम्रता का मतलब है कि भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना। साधारणतः भगवान संतुष्ट होते हैं जब हम नम्र होते हैं, परंतु अर्जुन की परिस्थिति में उनका आदेश था कि युद्ध करो, तो युद्ध करते समय कैसे नम्र हो सकते हैं। तो युद्ध करना ही नम्रता अर्जुन के लिए। तो जो सेवा के लिए आवश्यक है वो करना चाहिए। यहाँ पे कोई आके दंगा करे हमारे मंदिर में, क्या हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना, नम्रता के नाम पर उसको रखेंगे नहीं अंदर, बराबर। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेमानंदे।